हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44 एंड 45। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः पदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय उधीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 41। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दं प्रियसारथि, न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानहतान्। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दं प्रियसारथि, न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजानहतान्। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथी नवेदयत्तम प्रियायै शोषन्त्या आत्मजान हतान। शब्दों का अर्थ अथोपेत्य तत्पश्चात, अथ यानी तत्पश्चात, उपेत्य यानी पहुंचकर स्व शिविरम अपने शिविर में यानी टेंट में गोविंद इंद्रियों के गतिशील करने वाले भगवान श्री कृष्ण प्रिय सारथी प्यारे सारथी अर्थात रथ चालक न्यवेद्यत अर्थात प्रदान किया तम उसको प्रियायै प्रियतमा को शोचन्त्य यानी पश्चाताप करती हुई आत्मजान अपने पुत्र के लिए हतान वध किए गए। अनुवाद अपने प्रिय मित्र तथा साथी श्री कृष्ण सहित अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो अपने मारे गए पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम कहा, सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा हुआ है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने और चाहने से प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया था और पशु की तरह बांध दिया था। भगवान ने बहुत प्रेरित किया कि ये हत्यारा है, तुम्हारे पुत्रों का वध किया है इसने, तुमने अपनी पत्नी के साथ ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको मार डालूंगा, इसका सर लेकर आऊंगा, ये तो कुल अंगार है। अपने पिता जो कि मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके लिए भी दुख का कारण बनाओ और अपने स्वामी जो दुर्योधन है उनकी हत्या का भी कारण बना, तो इसको मार डालो, इस कुलंगार की हत्या कर दो, क्योंकि नीति यही कहती है और इसी में इसका श्रेय है। समिति शास्त्र कहता है कि यदि किसी अपराधी की हत्या कर दी जाती है तो वो नरक में जाने से बच जाता है, इसलिए इसको मार डालो। परंतु जैसा कि सुत गोस्वामी ने कहा कि भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि वो इस विपत्ति के समय में अपने गुरु पुत्र के साथ अपने संबंध को याद रखते हैं अथवा उस संबंध को याद ना करके अपने गुरु पुत्र को मार डालते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन इस विपत्ति के समय में भी अपने गुरु पुत्र की, जबकि भगवान उसे स्वयं कह रहे थे, फिर भी उसकी हत्या नहीं की, वो उसे बांधे शिविर में लेकर आए और अभी द्रौपदी की दशा देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं अथोपेत्य स्व शिविरम गोविंद प्रिय सारथी। अत्यंत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय सारथी, गोविंदम प्रिय सारथी, यानी कि वो गोविंद है, समस्त इंद्रियों के स्वामी है, हम सब तो दास हैं भगवान के, इटर्नल सेवक हैं, लेकिन ये भगवान इतने उत्तम हैं, इतने महान हैं, इतने करुणामयी हैं कि अपने भक्त की इच्छा के अनुसार वो वैसे ही अपने भक्त के साथ बर्ताव करते हैं। भगवान बताते हैं 4.11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि हम। तुम यदि मुझे सारथी बनाना चाहोगे तो मैं तुम्हारा सारथी भी बन जाऊंगा, तुम यदि मुझे अपना बालक समझ के मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हारा बालक बन जाऊंगा, यदि तुम मुझसे प्रीतम अपना समझोगे तो मैं तुम्हारे प्रीतम माधुर्य भाव के साथ, यदि तुम वात्सल्य चाहोगे तो माता पितावर, यानी कि भगवान होते हुए भी वो अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हर कोई भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान के साथ अपनी निष्ठा और श्रद्धा के द्वारा प्रयत्न करके भगवान को उसी रूप में प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अपने सारथी के रूप में प्राप्त किया था, इसी बात को याद कराते हैं सुत गोस्वामी और कहते हैं न वेदयत्तम प्रियाय शोचंत्या। शोचंत्या का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा शोक में थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। क्यों? आत्मजान हतान, उसके अपने पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, अभी ताजा ताजा उसके मस्तक विहीन पुत्रों के दर्द उसके सामने पड़े हुए थे और वो बहुत ज्यादा दुखी थी, उनके अपने पुत्रों की मृत्यु के ऊपर विलाप कर रही थी। इस दशा में उसने क्या किया, न्यवेदयत्तम, अर्थात उस अश्वत्थामा को अपनी प्रिय पत्नी को भेंट करा, बोला लो इसको, इसको इसके साथ जैसा भी सुलोक करना है तुम करो। द्रौपदी के सामने उसको पेश किया गया, वो बहुत दुखी थी उस समय। इनके सूत गोस्वामी के शब्दों से पता चल रहा है शोचंत्या आत्मजान हतान, विलाप कर रही थी एक एक बच्चे का गुण स्मरण करके, उनको स्मरण करके, उनकी बोली, उनका खाना पीना, माँ कहकर बुलाना, और बहुत ज्यादा दुखी थी। एक साथ पांच पांच पुत्रों की मृत्यु देखी थी द्रौपदी ने, और इस दशा में उसके बच्चों के हत्यारे को बांध कर उसके सामने पेश किया गया। कोई भी महिला उसको क्षमा नहीं कर सकती थी। इवन हमारे बच्चे को अगर कोई थप्पड़ भी मारता है ना, तो भी उसको देखकर हमारा खून खोल उठता है कि मेरे बच्चे को इसने मारा कैसे। और उसी माता के पांच पांच पुत्रों की हत्या करती थी, उस दशा में उस अपराधी को उसके सामने खड़ा कर दी। ऐसा भी नहीं कि उस बात को बहुत ज्यादा समय हो गया था, जैसे कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ ज्ञान सुनते हैं, कुछ शास्त्र अध्ययन, कुछ कथाएं श्रवण करके शोक थोड़ा दूर हो जाता है। उस ये तो उस समय की बात थी, उसी समय अभी ताजा ताजा मृत्यु हुई थी उसके बच्चों की, वो रो रही थी साफ साफ। यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं शोचंत्या आत्मजान हतान, वो क्योंकि अभी तक उसके पुत्रों का आत्महान भी नहीं हुआ था, उसके ना देह को जलाया भी नहीं गया था, वो फिर भी उस समय द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो उसका बंधन भी उससे सहन नहीं हुआ। मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, हत्या तो बहुत दूर की बात है, उसका बंधन तक द्रौपदी से सहन नहीं हुआ। इस शोक की दशा में भी विलाप करते हुए द्रौपदी अपने कर्तव्य को याद रख रही थी। द्रौपदी रो रही थी और इस दशा में उसने देखा कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा को पशुओं की तरह, जानवरों की तरह बांध कर लाया गया है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं तथा हृतम पाशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण प्रकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च तथा हृतं पाशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण प्रकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च तथा हृतं पाशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण प्रकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। तथाहितं पाशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्तेन निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया नाम च शब्दकात् तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम। इस प्रकार आहृतम मतलब जब लाया गया पशुओं की तरह बंधा हुआ, उसको जानवरों के समान जो बंधा हुआ रस्सियों से, तो अवांग मुखम उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अवांग मुखम यानी मुंह उसका पूरा बंद हो गया था, क्योंकि उसने कर्म इतना कर्म जुगुप्सितेना, कर्म यानी कार्य जुगुप्सितेना घृणित होने के कारण निरीक्ष कृष्णा देखकर, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने जब उसको देखा, अपकृतम अधर्म कार्य करने वाला गुरुसुतम गुरु के पुत्र को वाम स्वभाव, वाम मतलब सुंदर, स्वभाव यानी स्वभाव वाली, कृपया दयावश ननाम च प्रणाम किया तथा। अनुवाद, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत ही घृणित हत्या का कर्म करने के कारण शांत था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम तथा भद्र होने के कारण उसने उसका ब्राह्मण रूप में सम्मान किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अश्वत्थामा की बात सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरु पुत्र के समान नहीं अपितु अभियुक्त जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी ने के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु उसने ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्यता दिए जाने वाला सम्मान के से उसे वंचित नहीं किया। यह द्रौपदी के मृदु नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, अतएव भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक व्यक्ति ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। श्री प्रभुपाद की जय हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति सचमुच आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और निरशस ब्राह्मण बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्राह्मण बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। उत्तम पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर सूत गोस्वामी द्रौपदी के गुणों के विषय में अधिक चर्चा करते हुए कहते हैं, तथा हृतम पशुवत पाशपत्थम। जब द्रौपदी ने अपने गुरु पुत्र को पशु की तरह बंधे हुए देखा तो अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, वो किस तरह से था, वो आया था तो उसका मुख बहुत मलिन था। अश्वत्थामा का मुख बहुत ज्यादा मलिन, यानी कि जब कोई अपराध करता ना, अवांग मुखम यानी उसका मुख लटका हुआ था नीचे, वो नजरे नहीं मिला पा रहा था द्रौपदी से, आंखें ऊपर करके देख नहीं पा रहा था। कर्म जुगुप्सितेना, ब्राह्मण का पुत्र होकर उसने इतना निंदनीय कर्म किया था कि वो देख नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा यशस्वी था परंतु आज बाल हत्या के कारण वो नजरें नहीं उठा पा रहा था। परंतु यहाँ पर निरीक्ष कृष्णा पकृतम गुरु सुतम, निरीक्ष यानी जैसे ही देखा कृष्णा ने द्रौपदी ने, अपकृतम धर्म कार्य अधर्म कार्य करना, यानी कार्य तो भले उसने अधर्म का किया था, ब्राह्मण जैसा कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन फिर भी गुरु सुतम, वो यहाँ द्रौपदी ये भूल नहीं पा रही थी कि वो गुरु का बेटा है, तो उसने क्या किया, वाम स्वभाव। वाम स्वभाव का मतलब था कि द्रौपदी बहुत ज्यादा सुंदर स्वभाव की थी, इतना सुशील थी। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने कहा, जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव बच्चों के जैसा होता है, बहुत ही कोमल हृदय होता है उनका, और वो ब्राह्मण में अगर होता है उनके सामने, भले ही वो कैसा भी कार्य करते, वो किसी का अपमान करती नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों वगैरह का कभी भी अपमान उनको आता ही नहीं करना। लेकिन श्रीनाथ प्रभुपाद जी ने बोला, हमें भद्र स्त्री हो कि जिस तरह से भद्र या स्वभाव वाली जो स्त्री होती है वो जिस तरह से उनका सम्मान करती है, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि से ये सोचना चाहिए कि क्या वाकई में ये ब्राह्मण सम्माननीय है। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम श्लोक को लेंगे, और श्लोक में क्या कहा गया है कि जब द्रौपदी इस अवस्था में थी, रो रही थी, अपने बच्चों की शव के ऊपर मातम कर रही थी, विलाप कर रही थी, लेकिन उस समय भी जब उसके गुरु का पुत्र उसके सामने आया तो उसने उसका ननामच, वाम स्वभाव कृपया ननामच, उसको देखकर उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, और आते ही सबसे पहले उसका सम्मान किया, प्रणाम किया उसको गुरु सुतम की, अरे ये हमारे गुरु का पुत्र है। तो उस समय भले ही वो अपने पुत्रों के शोक में बहुत ज्यादा लीन थी, लेकिन फिर भी उसके पुत्रों का शोक उसके धर्म को कुचल नहीं सका। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी वामन स्वभाव शब्द प्रयुक्त करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो द्रौपदी का स्वभाव बहुत क्रूर दिखता है, हम अगर महाभारत देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत क्रूर स्वभाव की थी वो। जब संधि दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे थे तब वो अपने केश दिखा दिखा कर कह रही थी, देखो केशव, ये मेरे खुले हुए केश नजर नहीं आ रहे तुम्हें, ये मैंने प्रतिज्ञा की है कि दुशासन के खून से अपने केश को धोंगी, उसके बाद ही बांधूंगी, और तुम संधि कराने के लिए जा रहे हो, अगर तुमने संधि करा दी तो युद्ध कैसे होगा, कैसे मेरे ये केश बनेंगे केशव। तब बिना ऐसा उस समय ऐसा लगता है कि 13 साल बीत गए हैं और फिर भी ये इतनी क्रूर क्षत्राणी है जो अपने अपमान को नहीं भूल पाई है। लेकिन भक्तों, हमें वास्तविकता से ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी भगवान की शक्ति थी, इस शक्ति को भगवान ने निमित्त बनाकर भेजा था कि भगवान जो है वो समस्त क्षत्रियों का, जो अधर्मी क्षत्रिय हैं, उनका संहार करना चाहते थे इस द्रौपदी को निमित्त बनाकर। कुंती और द्रौपदी दोनों ही भगवान, कुंती महारानी को तो भगवान की सफलता शक्ति कहा जाता है, तो एक तरफ तो इतनी क्रूर द्रौपदी दिखाई गई और दूसरी तरफ वही द्रौपदी जो अपने पुत्रों की हत्या पर रो रही है, उसको अश्वत्थामा का बंधन भी सहन नहीं हुआ। दोनों स्वभाव बहुत विपरीत हैं, परंतु
वास्तव में द्रौपदी बहुत कोमल स्वभाव की थी, लेकिन पहले जिन लोगों ने जुआ हो रहा था वहां पर जिस जिसने द्रौपदी के केश आकर्षण को देखा था, जिस जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण को देखा था, भगवान उन सबकी मृत्यु करना चाहते थे। इसीलिए द्रौपदी को इतना क्रूर स्वभाव दिया था भगवान ने कि वो भूल ही नहीं देती थी पांडवों को कि उसके उसका कितना अपमान हुआ। बार बार अपने अपमान को याद कराती थी कि कहीं पांडव अपने धर्मात्मा स्वभाव के कारण उन्हें क्षमा न कर दें, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अक्सर कहते थे क्षमा ही धर्म है, लेकिन द्रौपदी उनको कभी क्षमा करने के लिए प्रेरित नहीं करती थी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, इसीलिए जैसे ही उसने देखा अश्वत्थामा को बांधकर आए तो वो कहने लगी, श्लोक नंबर 43, आवाच चा बंदना नयनम सती मुच्यताम ईश ब्रह्मणो नितिराम गुरु आवाच चास हन्त्यस्य बंदना नयनम सती मुच्यताम ईश ब्रह्मणो नितिराम गुरु आवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम ईश ब्रह्मणो नितराम गुरु आवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम ईश ब्राह्मणो नितराम गुरु। शब्दों का अर्थ आवाच कहा तथा असहन्ति न सह सकने के कारण अस्य उसका बंधन बंधा जाना, अनायनम उसका लाया जाना सती अर्थात परायणा भक्त, मुच्यताम इसे छोड़ दो एष यह ब्राह्मणा ब्राह्मण नितराम हमारा गुरु, यानी हमारे गुरु हैं, गुरु के पुत्र हैं। अनुवाद, वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि यह ब्राह्मण और हमारा गुरु है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह सहय नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार ना करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना की। शास्त्रों अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा नहीं रखता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री वामा के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत ही मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक के शत्रु के प्रति अनुदार नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर द्रौपदी को भगवान का शुद्ध भक्त बताया गया है, और श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त को भले ही अन्य लोग कितने ही कष्ट क्यों न दें, लेकिन वो कभी भी उनके लिए अनुदार नहीं होता। हमेशा सबके लिए हृदय में उदारता रखता है, कृपा रखता है, स्नेह रखता है, और हमेशा चाहता है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। जैसा हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को उन जल्लादों ने 22 बाजारों में कोड़े मारे, लेकिन वो सदैव भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे, भगवान इन पर कृपा करना। ऐसे नहीं बोल रहे थे कि भगवान इनको दिखाओ कि भक्तों को अगर मारते हैं तो इसका क्या अंजाम होता है। वो बोल रहे थे भगवान ये नादान है, इन पर कृपा करना, इन पर कोप मत करना। तो यही स्वभाव आज द्रौपदी दिखा रही। अवाच चा सहन सहन्त्यस्य, यानी असहन्य हो गया था उसको, जैसे उसने देखा वो रो रही थी, और उसके सामने जैसे अर्जुन ने उस गुरु पुत्र को बंधा हुआ लाया, तो बंधनान्यतम सती, उसको बंधा हुआ देखकर उससे असहन्य हो गया। अगर उसको मारते ना, तब तो कहना ही क्या कि उसकी क्या दशा होती। खाली बंधनान्यतम, वो खाली देख रही थी बंधा हुआ है, तभी भी कहने लगी मुच्यताम मुच्यताम एषः, खोलो इसे, खोलो जल्दी करो, क्यों इसको बांधा है। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो नितराम का मतलब होता है 100% हमारा गुरु रही है, इसमें ब्राह्मण है, इसको आप इस तरह से बांध कर लाए हो। वास्तव में ये द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, ये माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। बहुत ही उत्तम सती थी, नारी थी, 5 पतियों की सती व्रता पत्नी थी वो। विवाह 5 पांडवों से हुआ था जो भगवान की प्रिय पार्षद थे, और एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री थी। वो इतनी बुद्धिमान थी कि महाराज युधिष्ठिर उससे हमेशा आमंत्रणा करते थे, उस जो भी वो बात बताती उसके अनुसार चलते थे, संकेत देते थी ना द्रौपदी, उसी के अनुसार कार्य करते थे। राज का सारा हिसाब किताब द्रौपदी संभालती थी। द्रौपदी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी, ऐसा नहीं है कि वो उसके पास बुद्धि नहीं थी कि वो सोचे कि हाँ ठीक है ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जैसा इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। भले ही शास्त्र में, श्री प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में, कि शास्त्र में बताया जाता है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने कर्तव्य से गिर जाता है तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्योंकि द्रौपदी जो है वो प्रथा है, प्रथा बताई है कि भले ही शास्त्र में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन हमें अपने गुरु महाराज के पुत्र का सम्मान करना चाहिए। वो सिखा रही है कि हमें सदैव विनम्रता के साथ उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही अगर कोई वैष्णव होता है वो अपने पद से गिर भी जाता है तो भी हमें कोई अधिकार नहीं है। भले भगवान है वो, उन्होंने अगर उनका अपमान किया यानी राधर किया वो अलग बात है, लेकिन हमें हमेशा विनम्र भाव से उनका सत्कार करना चाहिए। एक बार कुरुक्षेत्र में जब भगवान की 16,000 पटरानियां एक साथ आई थी, और उस समय सब लोग आए थे वहां पर कुरुक्षेत्र में दर्शन करने के लिए, तो 16,000 पटरानियों ने द्रौपदी से कहा कि हम 16,000 हैं और हमारा एक पति है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा हस्तिनापुर चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, हमारे साथ होते ही नहीं है, और तुम एक हो, तुम्हारे 5 पति हैं, वो कभी भी तुमसे दूर नहीं जाते, सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशिष्टता है? उस समय द्रौपदी इतनी बुद्धिमान थी कि उस समय क्लास देती है, भगवान की पत्नियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश देती है। और द्रौपदी बताती है कि मैं अपने पांचों पतियों को के सोने के बाद सोती हूँ। महाराज युधिष्ठिर राज की सारी हिसाब किताब सब कुछ भी याद नहीं रखते, सब मुझे दे देते। वो कभी भी जो भी हिसाब किताब होता है वो मुझसे ही करवाते हैं, मुझे सब याद है। कभी कभी महाराज युधिष्ठिर मुझसे परामर्श लेते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा केस आता है तो मुझसे परामर्श लेते हैं। और द्रौपदी के गुण तो हम इधर देख ही रहे हैं कि पुत्रों की हत्या हो गई है, उसका इतना संताप है, विलाप कर रही है, रो रही है। लेकिन जैसे ही अपनी हत्यारे को, अपने पुत्रों की हत्यारे को देखा, तो वो यही सोच रही है कि अब अपने ही गुरु पुत्र ने किया है तो क्या करूं मैं। और कोई होता तो चलो ठीक है, उसको हम सजा देते, लेकिन ये हमारा गुरु। जैसे अगर कभी कभी हम खाते हैं और हमारी जीभ जो है वो अपने ही दांत से कट जाती है तो क्या कर सकते हैं, क्या अपने दांत ही निकाल के फेंक देंगे। तो उसी तरह वो जानती है कि कष्ट मिला है लेकिन अपने ही गुरु पुत्र के द्वारा, नित्यराम गुरु, ब्राह्मणों नित्य, एक तो ब्राह्मण है, चलो ब्राह्मण का अगर हम सम्मान नहीं भी करें तो भी चले, लेकिन ये तो वो गुरु का पुत्र है जिस गुरु के द्वारा ही आज आपने यह युद्ध जीता है, तो वंदनीय है, हमारे गुरु है, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है तो हमारा कर्तव्य है कि उनकी पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें। और हमारे गुरु हैं नित्यराम, तो हमें सदैव उनका सत्कार करना चाहिए। वो बताती हैं कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुच्छताम मुच्छताम एषाम, उसे जल्दी से खोलो। और आगे कहती है श्लोक नंबर 44 में, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसंयम अस्त्रद्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसंयम अस्त्रद्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसंयम अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो पसंयम अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् सरहस्यो धनुर्वेद। सरहस्यो यानी बहुत ज्यादा रहस्य, गोपनीय। धनुर्वेद धनुष बाण चलाने की जो शिक्षा है वो सभी सर्गो छोड़ते हुए, उपसंयम वश में करते हुए, अस्त्र हथियार ग्राम सभी प्रकार के च भविता च मना तथा भविता यानी अपने से शिक्षित विद्वान यत जिनकी अनुग्रहात कृपा से। अनुवाद, यह द्रोण की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या शब्दों के दिव्य विज्ञानपन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म कुशल सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा प्राप्त थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही उसका प्रतिनिधि था। यह अभिमत था। उस वामा द्रौपदी का यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षित होना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र होना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे यानी व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो द्रौपदी ने पहले कहा कि इसको बांधा हुआ देखकर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुच्यताम एषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो हमारे 100% गुरु हैं, हमारे इटर्नल गुरु के पुत्र हैं। जो कुछ भी आपने सीखा, आगे बोल रही हैं, सरहस्यो धनुर्वेद सभी सर्गो पर संयमा, कि इसमें आज आप जो धनुर्विद्या पर इतना गर्व है, आपको जिस धनुर्विद्या के कारण आपने इतने सारे युद्ध जीते हैं, सर रहस्यो, उसके सारे रहस्य इसके पिता ने आपको सिखाया ना, द्रोणाचार्य के कारण ही आज आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो ना। और आपको ना केवल उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई बल्कि सभी सर्गो पर संयमा, एक तो आपको धनुर्विद्या सिखाई, बाण चलाना सिखाया, ऊपर संयम सिखाया। यहाँ पर वो उनको इंगित करके ये सिखा रही हैं, बता रही हैं कि देखो अपने पुत्र को उसने लौटाना नहीं सिखाया, वो आपके ऊपर कितने कृतज्ञ थे, कितना आपसे प्रेम करते थे कि आपको तो उन्होंने शस्त्रों को लौटाना भी सिखाया। अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात, आपके जितने जितने अस्त्र चलाने आपको आ रहे हैं, चाहे वो बाण हो, चाहे वो मंत्रों के द्वारा, बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा, जो ये ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र और पशु, जो भी अस्त्र आपको चलाने आ रहे हैं, अस्त्र ग्रामश्च भवता, जितने भी अस्त्र हैं वो सब शिक्षितो यद अनुग्रहात, उसी के पिता के अनुग्रह से आपको प्राप्त हुए हैं। और आप ये सब भूल कैसे सकते हो। द्रौपदी याद दिला रही है कि उनके पिता के आपके ऊपर कितने सारे उपकार हैं। आगे कहती है, सएष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्ध्वं पत्न्यास्ते नान्वर्गाद्वीर सुकृपि स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्ध्वं पत्न्यास्ते नान्वर्गाद्वीर सुकृपि स एष भगवान् द्रोण, वही भगवान् द्रोण यानी कि जिससे आपने इतना सब सीखा है, प्रजा रूपेण वर्तते, वही द्रोण अपने बेटे के रूप में आपके सामने आकर प्रस्तुत हो गए। वास्तव में द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। अर्जुन के लिए ही उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, ताकि वो चाहते थे कि अर्जुन एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे। तो तस्मात मनोर्धम पत्न्यास्ते, और उनकी एक पत्नी थी जो कि जिसका यहाँ पर नान व गादी रसू कृपी, कृपी यानी कृपाचार्य की जो बहन थी वो उनकी पत्नी थी, और वो अभी तक अपने द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई थी। क्यों सती नहीं हुई थी? क्योंकि वो उसका एक पुत्र था। ऐसी प्रथा थी कि यदि अगर किसी का पुत्र जीवित होता था, छोटा पुत्र होता था, विवाहित नहीं होता था, तो उसकी पत्नी जो है वो कभी भी है ना सती नहीं होती थी, जैसे कुंती महारानी सती नहीं होती अपने पुत्रों के कारण, पुत्रों को की संभाल करने के कारण। तो यहाँ पर बता रहे हैं तस्मात मनोर्ध, उनकी जो पत्नी थी पत्न्यास्ते नानवगाद्वी, वो सती नहीं हुई थी उनके जाने के बाद, क्योंकि वीरसु वो पुत्र वाली थी, पुत्रवती थी। इसलिए अब एक तो बेचारी पहले से अपने पति को याद करके विलाप कर रही होगी, और उसको यदि पता चल जाएगा, वो एक तो विरह का दुख भोग रही है अपने पति की मृत्यु का, और अगर उसको ये पता चल जाए कि उसके पुत्र के साथ हम ऐसा सुलूक कर रहे हैं, तो वो कितना ज्यादा दुखी होगी। यानी यहाँ पर द्रौपदी की करुणा प्रदक्षिण हो रही है कि कितनी ज्यादा करुणा है उसके हृदय में, वो अपने पुत्रों के दुख को भोग रही है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि जो दुख मैं भोग रहा हूँ वो कोई और भोगे, या वो कृपी भी भोगे जो आपके गुरु की माता, गुरु की पत्नी है जो अश्वत्थामा की माता है। अनुवाद, अपने पुत्र द्वारा प्रपत्नी दित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। द्रोणाचार्य, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की जय हो। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायणा स्त्री अधर्गिनी होती है, अर्धांगिनी होती है। यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ इच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधित्व करता था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतएव हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था, और अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध ना किए जाने का द्रौपदी का यही तर्क था। यहाँ पर जैसे सुत गोस्वामी ने बताया, स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, कि वही द्रोणाचार्य जिसने आपको इतना सब सिखाया, इतनी सारी विद्या दी, वो अपने पुत्र के रूप में अब आपके सामने आ गया है। उसकी पत्नी, द्रोणाचार्य की पत्नी अभी तक दुखी इतना नहीं है क्योंकि उसका पति भले मर गया हो लेकिन उसका पुत्र अभी तक जीवित है, वो अपने पुत्र के सहारे जी रही है। आप खुद सोचो, यदि उसे ये पता चलेगा कि उसके पुत्र की ये दुर्दशा हो रही है पांडवों के द्वारा, तो उसको कितना दुख होगा। तो यहाँ पर द्रौपदी अपनी करुणा का बखान कर रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इसी चीज को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कितने गुण होते हैं एक शुद्ध भक्त के अंदर। जैसे हमने अभी पढ़ा करुणा का गुण, और मान सम्मान देने का, यानी कि अपने लिए विनम्रता का गुण, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा ना करके अन्य, भले इतने शुद्ध भक्त भी नहीं हो लेकिन अन्य, जितने महाप्रभु ने का क्या कहा है, अमानी न मान न देना, अपने लिए मान की कोई इच्छा ना करना और दूसरों को सम्मान देना। तो ये सारे गुण आज द्रौपदी के द्वारा हमें दिख रहे हैं, और वो हमें बता रही है कि भले ही सामने वाला कितना ही गिरा हुआ हो लेकिन फिर भी हमें अपने लेवल के, उनके लेवल के हिसाब से उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। उसके पुत्रों का हत्यारा उसके सामने था लेकिन फिर भी वो प्रणाम कर रही है और अपने पति से कह रही है कि आप इसको छोड़ दो, इसके ऊपर रक्षा, इसकी रक्षा करो। आगे देखते हैं द्रौपदी और क्या क्या कहते हैं। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं।